नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग जरूरी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा। सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह। कांवड़ियों ने यात्रा व्यवस्था को लेकर सरकार का जताया आभार। और प्रदेश के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत व उधम सिंह नगर जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में बादल छाए हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद रचनात्मक रही। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट नोट किए हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा।
संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी के रेनबो और अतिरिक्त चैनलों पर तथा संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि इस बार भराड़ीसैंण में सत्र पूरी तरह सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती भूषण ने कहा कि इस बार मानसून सत्र न केवल विषय वस्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया गया है।
पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर सत्र इसीलिए किया था क्योंकि मेरी वहाँ तैयारी नहीं, इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि पूरा जो नेवा है, जो ई नेवा यहाँ पे था, वही नेवा वहाँ पर हमने किया है। साउंड प्रूफिंग भी इस बार हमने IIT रुड़की के साथ प्रयास किया है कि वहाँ जो साउंड का एको होता था उसको मिनिमम कर सके या खत्म कर सके, तो ये प्रयास हुआ है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। 29 करीबन मुझे विधायकों के सवाल आए हैं और उसमें 484 सवाल।
मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक फलदार पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल है, बल्कि माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अनूठा माध्यम भी है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार से आह्वान किया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान भावनात्मक जुड़ाव और पर्यावरणीय चेतना का सुंदर संगम है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह है। प्रतिदिन लाखों कांवड़िए गंगा घाटों पर स्नान कर गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे हैं। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा से आया 5 कांवड़ियों का एक जत्था ऋषिकेश में गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर नीलकंठ महादेव के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह लगाई गई पुलिस कैनोपी से उन्हें यात्रा मार्ग की सही जानकारी दी गई। कांवड़ियों ने बताया कि कांवड़ियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शौचालय व अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर उन्होंने कांवड़ यात्रा पर आने वाले कांवड़ियों से अनुरोध किया है कि वे यातायात नियमों का पालन कर कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।
कांवड़ लेने के लिए आए हैं हम 5 लोग ग्रेटर नोएडा से। अभी हम फिलहाल ऋषिकेश में हैं और यहाँ पे हम गंगा जी में स्नान का, नहाने का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद हम नीलकंठ जाएंगे, नीलकंठ जाना है। और यहाँ की जो अपने व्यवस्था देखी है, प्रशासन की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। और जो कांवड़िया है अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट की, पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है। और कांवड़ियों से भी अनुरोध है कि वे भी अभी भी अपनी व्यवस्था बना के चले ताकि कोई मतलब नहीं हो पाए।
आगामी 9 अगस्त को देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए बाजारों में राखियों की खरीदारी शुरू हो गई है। रक्षाबंधन पर राज्य में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हस्तनिर्मित राखियां बनाकर अपनी आजीविका को मजबूत कर रही हैं। इसी क्रम में बागेश्वर रेडक्रॉस स्वयं सेवियों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए एक विशेष राखी निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जिले की 150 से अधिक स्थानीय महिलाएं बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने हाथों से 500 से अधिक राखियां बनाई। कार्यक्रम संयोजक राजेश्वर कार्की ने कहा कि यह सिर्फ एक राखी नहीं, भावनाओं की एक डोर है जो देश के वीर जवानों तक पहुंचेगी और उन्हें यह एहसास कराएगी कि वो अकेले नहीं हैं।
विगत कई वर्षों की भांति हम इस बार भी अपने सैनिक भाइयों के लिए जो सरहदों में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे देश के भीतर भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उन भाइयों को अपने प्रेम के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में बहनों के द्वारा हस्तनिर्मित राखियां हम उनको प्रेषित कर रहे हैं। ये राखियां हमारे दिल का संदेश है हमारे भाइयों के लिए कि वे जहां भी रहे, देश के जिस भी हिस्से में रहे, वे हमेशा सुरक्षित रहे, दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। हमारी बहनों की मंगल कामनाएं हैं जो हमारी राखियों के माध्यम से हमारे सैनिक भाइयों तक जरूर पहुंचेंगी।
भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान घायल हो गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिब्बत के दार्चिन क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री घोड़े से गिरकर घायल हुई, जिससे उनकी कमर में गंभीर चोट आई है। यात्रा के बीच में ही उन्हें भारत लाया गया। उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं ली जा सकी और उन्हें सड़क मार्ग से ही धारचूला लाया जा रहा है। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश जिलों में दिनभर बादल छाए रहे, जबकि उत्तरकाशी, चंपावत और राज्य के अनेक हिस्सों पर शाम से हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं चारधाम जाने वाले सभी मार्ग यातायात के लिए सुचारू हैं और तीर्थयात्रा निर्बाध रूप से चल रही है। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग जरूरी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा। सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह। कांवड़ियों ने यात्रा व्यवस्था को लेकर सरकार का जताया आभार। और प्रदेश के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत व उधम सिंह नगर जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।